کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے, علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, زین مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر خوبصورت بنا لو, تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا عطاری ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاک اللہ خیر.
کیسے مزاج کے؟
الحمدللہ علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟
اللہ کا شکر الحمدللہ. اس پروگرام میں بطور خاص ہمارے پاس کئی ویڈیو سوالات بھی ہوتے ہیں, کچھ ہم پیکجز بھی شامل کرتے ہیں, اور سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ سوالات ہی ہیں. پہلے بڑھتے ہیں ہمارے کچھ ناظرین کے ویڈیو سوالات ہیں. مجھے
مفتی صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں اور یہ جو یہاں سے زائرین کو لے کے جاتے ہیں اور ان سے جو کمٹمنٹ کرتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے, اور وہاں جا کے وہ فیسلٹیز ان کو اس طرح سے پرووائڈ نہیں کرتے جس طرح سے انہوں نے کمٹمنٹ کیا ہوتا ہے, تو کیا یہ اس طرح اس کاروبار کے اندر جو کرتے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب دیجیے.
سوال کی صورت میں تصوراتی طور پر, اور بہرحال ان کا دکھ بھی ایک الفاظوں سے ظاہر ہو رہا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں سفری معاملات میں, اور اگر ٹریول ایجنٹ جو بھی انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ لوگ جو پیکجز لے کے جاتے ہیں یہاں سے, چاہے وہ عمرے کے ہوں, حج کے ہوں, دیگر, تو بہرحال شکایت ایک طرح کی ظاہر ہو رہی. کیا کہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سروسز کا معاملہ فقہی اعتبار سے اجارہ جو ہے وہ کہلاتا ہے, کہ آپ جو ہے وہ سروس کے بدلے میں جو ہے وہ کوئی چیز قیمت جو ہے وہ اس کی ادا کرتے ہیں, فیس ادا کرتے ہیں, چارجز ادا کرتے ہیں. تو در حقیقت ٹریول کا جو آپ پیکج جو ہے وہ لیتے ہیں اس کے اندر تقریباً ساری چیزیں سروسز ہی جو ہے وہ ہوتی ہیں, ایئر لائن کے ٹکٹ سے لے کر اور آگے جو ہے وہ ہوٹل یا جو ہے وہ آگے مزید ٹریولنگ, یہ تمام چیزیں سروسز ہی ہیں. ان تمام کا مجموعہ گویا کہ ان تمام سروسز کا مجموعہ جو ہے وہ ٹریول ایجنٹ جو ہے وہ آفر کرتا ہے. تو سروسز کے اندر بھی یہی حکم ہے جس طرح ہم خرید و فروخت میں بات کرتے ہیں, کہ آپ جو چیز دے رہے ہیں وہ چیز عیب سے پاک ہونا ضروری. ٹھیک, جو بول کر دے رہے ہیں وہ ہی دیجیے, یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا وہ میڈ ان جاپان جو ہے وہ بولیں اور میڈ ان چائنا پکڑا دیں, یا میڈ ان پاکستان جو ہے وہ پکڑا دیں, یا آپ کسی کمپنی کا نام لے رہے ہیں کہ بھئی فلاں کمپنی کی ہے لیکن حقیقت میں وہ اس کمپنی کی نہیں ہے. تو یہ جس طرح یہ جھوٹ اور دھوکہ دہی ہے, اور بعض صورتوں میں یہ چیز ریٹرن کرنے کا بھی اس شخص کو جو ہے وہ حق حاصل ہوتا ہے.
ٹھیک,
جب جو بیچنے والا ہے اس نے اس کے اندر دھوکہ دیا ہے. تو یہی صورتحال سروسز میں ہے کہ آپ نے جو جو چیزیں کمٹمنٹ کی ہے ان کے مطابق ہی آپ نے چونکہ چارجز کی بات کی ہے, تو لہٰذا آپ پر اس کی ادائیگی جو ہے وہ ان سروسز کی فراہمی یہ بے حد ضروری ہے. اس میں کسی بھی جگہ پر اگر کوئی کمی یا کوتاہی ہوتی ہے, چاہے ٹریول ایجنٹ کی جانب سے جان بوجھ کر ہو, چاہے اسے پیچھے سے ہی جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ ڈاج دیا ہو, دھوکہ دیا ہو,
ٹھیک ہے,
بہر صورت جب یہ آگے وہ سروس فراہم نہیں کر پا رہا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا, جس کا اس نے کمٹمنٹ کیا تھا, تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ گناہگار ہے, اور اس پر لازم ہوگا کہ یہ جہاں پیکج کے اندر کٹوتی بنتی ہے, پیسے ریٹرن کرنا بنتے ہیں, وہاں یہ وہ ریٹرن کرے, یا جو ہے وہ ان کو آپشن دے دے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ چیز میں آپ کو فراہم نہیں کر سکا, اس کے اندر اتنے پیسے عموماً اس کے بنتے ہیں, तो आप ये वापस ले लीजिए।
क्या चीज कमी हो सकती है? मसलन आमतौर पर जब जाते हैं तो अगर हम बात करें, जो ज्यादातर लोगों को इतराजात होते हैं, जिसपे कुछ मसाइल भी होते हैं, एक तो मसला ये कि ज़ाहिर एयरलाइन की टिकट उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता और वो उसी तरह की होती हैं, वो चीज़ें एयरलाइन की तरह से ही वाजे होती हैं कि भाई आपको इतना वजन अलाउ है, इतनी ये चीज़ें अलाउ, ये सब चीज़ें तो हो गई। अच्छा, इसके अलावा जो वहाँ जाना है तो अब वहाँ दो तरह के मसाइल होते हैं। एक है ज़्यारात के अंदर बाज़ूकात ये ज़्यादा चीज़ें लिख देते हैं और फिर वहाँ जाकर कहते हैं कि भाई ये शेड्यूल नहीं बनना। मक्का मुकरमा या मदीना मुनवरा ये तो नॉर्मल ज़्यारत सब करवाते हैं और हो रही होती हैं, और वहाँ पे भी तकरीबन एक तरह के कम पैसों से, कम रियालों से वो भी ज़्यारतें हो जाती हैं। लेकिन इसमें बतौर ख़ास ताइफ शरीफ को आजकल लिखा जाता है कि मक्का मुकरमा में तो ताइफ भी हम लेकर जाएंगे। ताइफ झाक यानी मिकात ही चूँकि वहाँ क्रॉस हो जाती। मदीना मुनवरा में बदर शरीफ ये लिख देते हैं पहले। इसमें मसाइल हो जाते हैं कि भाई आप बदर शरीफ का आपने बोला था कि ये पैकेज में शामिल है और ये ज्यारत में है, वो नहीं दे रहे। तो एक तो ये वाली सूरत है। इस पे क्या
देखें, जब आपने जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं तो उनके अंदर वही कि फरहमी तो जो है वो ज़रूरी है, जहाँ ले जाने की कमिटमेंट की है वहाँ आप जो है वो लेकर जाएं। लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरे अपनी कुछ मालूमात हैं, इससे पहले, क्योंकि ज़्यारतें तो आप जो है वो 5वें 6वें दिन या उसके बाद जाकर शुरू करते, इसके जो झगड़े शुरू होते हैं ना वो होटल से शुरू
जी,
होता है।
मेरा दूसरा सवाल यही
हाँ,
था।
यानी बुनियादी ये होता है, क्योंकि देखें ज़्यारत तो एक वन टाइम काम है। होटल के ऊपर आपने बात की कि 300 मीटर वाला होटल जो है वो देंगे या 500 मीटर वाला होटल जो है वो देंगे, लेकिन होटल आप ले आके दे देते हैं 1 किलोमीटर दूर। तो ये अक्सर जो बुनियादी होता है, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनके लिए चलना मुश्किल होता है या उनके साथ बूढ़े होते हैं, तो कई लोग बाकायदा पैकेज की ज़्यादा अदायगी ही इस बुनियाद पर करते हैं कि जनाब जो है वो हमें करीब का होटल जो है वो चाहिए। तो एक तो ये जो है मिस कमिटमेंट होती है। अच्छा, इसी तरीके से अगर ये बात की है कि भाई आपको जो है वो हम सेपरेट रूम देंगे और उसके चार्जेस भी ले लिए,
ठीक,
या चार्जेस नहीं लिए वैसे ही कह दिया, कमिटमेंट की कि भाई जो है ठीक है हम आपको इन्हीं पैसों में सेपरेट रूम देंगे,
तो आपने वही एक तरह का
अब
तय कर
आप
लिया।
तय कर लिया, आपने सामने वाले तो नहीं बोला कि इन्हीं पैसों के अंदर देंगे, या अगर उसने आपसे वो बार्गेनिंग की भी है तो बार्गेनिंग करके आप एग्री कर गए ना कि भाई ठीक है मैं इन्हीं पैसों में आपको सेपरेट रूम दूंगा, अगर जो उसके अलग चार्जेस भी होते हैं। तो जब उसकी बार्गेनिंग के बाद आपने जो है वो कमिटमेंट कर ली, तो अब आप पर लाजिम है उसको सेपरेट रूम दें। अब वहाँ सेपरेट रूम नहीं दे रहे होते कि नहीं जनाब जो है वो रूम का मैं, या जो भी जो है वो बात है, तो ये इब्तदाई समझे जो है वो शुरू होता है। अच्छा, ट्रैवलिंग के अंदर भी जो आपने कहा कि एयरलाइन में नहीं होता, उसमें भी कई जगह के ऊपर ये होता है कि भाई बात डायरेक्ट फ्लाइट की थी लेकिन बाद में कनेक्टिंग पकड़ा दी, क्योंकि टिकट तो बाद में ही हाथ में आना है ना, शुरू के अंदर तो जो है वो नहीं है। इसी तरह लगेज के अंदर होता है कि, या जो है वो मील में तो मुझे नहीं मालूम कि इतने इस सफ़र के अंदर होता हो या नहीं, लेकिन कई ऐसी एयरलाइन है जिनके अंदर जो है वो खाना नहीं है, या नॉन रिफंड, अपने पैसे बचाने के लिए नॉन रिफंड जो है वो करवा ली टिकट और अब किसी वजह से जो है वो आगे पीछे कोई डेट हुई या कोई मामला हो गया तो उस वक्त झगड़ा जो है वो हो जाता है। तो यूँ बहुत सारे मसाइल हैं कि जिनके अंदर जो है वो इख्तिलाफात जो है वो होना शुरू हो जाते हैं।
ये चीज़ें तो चंद ये ट्रेवल एजेंसी कोई भी हो एजेंसी वाले ये तो वाजे करते हैं, ये वाली तो बुनियादी चीज़ें हैं ना। डायरेक्ट उसमें काफ़ी एहराम दीगर मामलात में भी वो पहले से ही तरबियत भी होती है, तकरीबन लोग सेशन अपना करते हैं और इस तरह की चीज़ें। तो अगर तो फ्लैट डायरेक्ट है तो वो उसके मुताबिक उनको गाइड करते हैं, और अगर रास्ते में कहीं स्टे है तो डायरेक्ट स्टे कोई नॉर्मल ही होता है, बाज़ का 5 घंटे 6 घंटे।
जी ऐसे ही,
तो उमूमन ये कम यानी ये वाली सीरीज को, और वैसे भी टिकट सामने हैं बिल्कुल, और यहाँ से दुबई को के प्रिंट तो वो दे ही देते हैं शुरू से ही कुछ ना कुछ, बगैर उसके यानी उसके नाम की टिकट के। और
असल में टिकट देखें वीजे के बाद मिलता है,
जी
वीजे से
हम
पहले तो टिकट नहीं होगा, और जब वो पैकेज करवाने गया है असल में कमिटमेंट तो उस वक्त की है ना।
दिखाते हैं, मुझे किसी ने जो होता है
अच्छा
यानी ये हमारे पास ये कोटा है, ये इतने जहाज का इसमें है, क्योंकि इनके पास एक जहाज का नहीं होता,
ठीक है,
बाज़ औक़ात मुख्तलिफ डेट्स और मुख्तलिफ वक्त आप अपने टाइम के मुताबिक लेना चाह रहे हैं कि मैं दिन में सफ़र करना चाहता हूँ।
सही
कुछ होते हैं कि यार रात में सफ़र कराओ, हम इस टाइम वहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो ये अपनी तसल्ली के लिए लोग बहरहाल इनके सिस्टम में देखते हैं कि इनके पास भी वो है कि नहीं है, और ये
देखिए, ये
हमें
भी जो आप फरमा रहे हैं, जो कुछ पढ़े लिखे हैं जिन्होंने एक आध बार सफर किया, भाई
मामला ही यही है।
जी
असल मामला ये है कफिल साहब, आप जिसने सफर किया हुआ है ना, उनको ये भी पता चल रहा होता है कि ये 500 मीटर कितना है, तीन
जी
सौ मीटर कितना है, 150 मीटर कितना है। अच्छा, इसकी पैमाइश कहाँ से
कहाँ से
करनी है
शुरू होगी
ये
और
भी नहीं,
कहाँ खत्म होगी।
क्योंकि एक तो हरम और उसका सेहन और उसके बाद की जो उसके मुल्हिका चढ़ाइयां हैं, तकरीबन
जी
हर तरफ से चढ़ चढ़ के कुछ मेहनत से आदमी पहुंचता है वहां पे ना, तो बाद उसी बिल्कुल जो चौक है उससे आगे पैमाइश करते हैं, और जहाँ होटल है उससे भी कुछ उसकी भी हदूद बाहर निकाल के ना ये टुकड़ा पैमाइश करते हैं,
जी
ये बकिया सब निकालते हैं। दर ये तजर्बात से बगैर जब वहां जाते हैं उन्हीं को तजर्बा होता है। अब तो बहुत आसान है, अगर इस तरह के मामला तो उसकी लोकेशन के जरिए, होटल की लोकेशन के जरिए ये चेक किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल हुक्म शरी ये बिल्कुल वाज़े है, इसमें धोखा नहीं होना चाहिए, लोगों को वाज़े तौर पर बताना चाहिए। बाद अवकात तो लोग अपने मोहल्ले के एतबार से बता रहे होते हैं,
जी
यानी यहाँ वालों को तो यही बताएंगे ना कि यार ये देखो आप मस्जिद से निकले हो ना तो ये वहां तक है बस।
जैसे ये कि भाई फैजान मदीना से आप जो ना ये सामने पहुंचेंगे ना रोड तक, तो
हाँ
इतने ही दूर जो है वो
इतना ही
होगा।
दूर है। अब वो बोलता है यार ठीक है यार, ये तो हमारी आम रूटीन है कि हम बाइक वहां खड़ी करते हैं और
जी
यहाँ हम अंदर आते हैं, और मस्जिद में भी हम जाते हैं तो पैदल ही जाते हैं, लेकिन यही फासला जब वहां पे नजर आता है तो फिर वो कुछ
अच्छा
कदरे ज्यादा होता है, और पूरा पूरा इलाका भी मशहूर हो जाता है। मरकजिया में देंगे आपको, फुलां जगह देंगे, अब उसकी भी क्या जेहत है, किस तरफ
वो
है,
ऐसे ही है जैसे बोले पीआईबी के अंदर देंगे, तो
आपको कहीं
पीआईबी जो वो वसी वाली से, बल्कि पीआईबी से ज्यादा जैसे पीसीएच पीईसीएचएस जो है वो है, तो
सोसाइटी।
अब जो है वो बहुत तवील जो है वो इलाके पर फैली हुई है। तो बहरहाल इसमें दोनों चीजें हैं, कस्टमर को भी चाहिए कि वो वजाहत ले ले, लेकिन कस्टमर जब नया होता है तो उसे इतना पता ही नहीं होता है मेरे साथ होना क्या है, लेकिन जो कारवान वाले हैं उन्हें चाहिए कि बहरहाल इस बात की मुकम्मल वजाहत दें। लेकिन वैसे भी जो है वो किसी के साथ चीट करना, धोखा देना वो हराम ही है, लेकिन एक शख्स जो कि जाहिर मक्का व मदीना है उसके साथ करना बदरजा औला जो है वो मुनासिब जो है वो नहीं है। फिर ऐसे अफराद जब उनको तकलीफ पहुंचती है ना, तो वो बेचारे जो बददुआएं देते हैं कारवान वालों को या ट्रैवल एजेंसी वालों को, वो फिर आप सोचें कि वो दे कहाँ रहे होते हैं। वो
और
खाना
दे बदवाएं
काबा,
दे उन्हें हैं।
वो खाना काबा के जो है ना वो दर पकड़ के ही जो है ना वो बद्दुआ दे रहे होते हैं। तो अपने आप को मजलूमों की बद्दुआ से वैसे भी बचाना चाहिए, लेकिन वहां पर आप देखें कि जब मजलूम जब बद्दुआ करता है तो अर्शे इलाही हिल जाता है, तो फिर वो अगर खाना काबा में खड़े होकर जो है वो किसी के लिए बद्दुआ कर रहा है, तो फिर आप ये सोचें कि यार हमारा कारोबार नहीं चल रहा, हमारा कारोबार ठप हो गया है। तो जरा अपने पिछले जो है वो आमाल की तरफ भी नजर करें कि हमने लोगों के साथ जो है वो क्या किया है। कई दफा यकीनन ऐसा होता है कि आपके साथ भी चीटिंग हो जाती है, लेकिन देखिए कारोबार तो रिस्क का ही नाम है ना, हम माल जो है वो उठाते हैं ज्यादा पैसों के ऊपर कि इससे ज्यादा पर बेचेंगे, लेकिन मार्केट डाउन हो जाती है तो बस औकात उससे भी सस्ते में बेचना पड़ जाता है, नुकसान होता है। तो कारोबार में नुकसान होने का ये मतलब नहीं है कि आप आगे वाले को भी जो है वो नुकसान कर दें। आपको नुकसान हुआ है तो आपको वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, ना ये कि आप सामने वाले को जो है वो धोखा दे दें या झूठ बोलकर जो है वो बेचकर आप अपना नुकसान पूरा कर लें। तो लिहाजा अगरचे आपने आगे मजीद किसी से जो है वो चीजें ली हुई हैं, तो अगर आपके साथ गलत हो भी गया है तो आप अपने कस्टमर के साथ गलत ना करें। दो ही सूरतें हैं कि या तो आप उन्हें बता दें कि यार देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, तो अगर आप मेरे साथ कॉपरेट कर लें और इस चीज़ पर एग्री कर लें तो बहुत नवाजिश होगी, नहीं तो फिर यही है कि भाई जो उनका हिसाब के मुताबिक रिटर्न बनता है वो
ये
आप जो है वो अदा करें।
वाकई इस तरह के, जरूरी नहीं किसी ने धोखा किया हो, यानी कोई और भी आगे
जी
हैं वहां पे भी ऐसा ही होता है बाज़ औक़ात, क्योंकि जो ज़ियारात करवाते हैं ये उनको अपना
ना,
ऑर्डर दे
एजेंट दर
देते,
एजेंट होते हैं असल
हाँ
में ना,
कि भाई
कई
ये
जो है बीच
काम
में लोग
हमारे
शामिल
इतने
होते
हाजी साहबान हैं आप इनको ज़ियारात करवा देना, इनको ये करना। हमारे साथ एक सफर में ये हुआ कि वापसी एयरपोर्ट पे छोड़ना, जाहिर ये सब चीजें उसमें शामिल थी,
जी।
हमने जो भी सर्विस ली है कि आपने जद्दा है वहाँ है फिर वापसी है, तो ये सब इसमें शामिल। मेन तो होता ही है ना कि मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा से वापसी जो भी है। तो अब वो जिसका नंबर दिया हुआ है कि भाई इस नंबर से आपको गाड़ी मिल जाएगी वापसी पे, तो अब उसको कर करके थक गए भाई, पर वो तो कह रहे हैं भाई कौन से आप लोग किस डेट से आए थे, किस डेट पे हमें तो क्या पता। अच्छा वो यहाँ तो वो भी जाहिर है उनसे भी रब्ता इतना हो नहीं पाया, या हुआ तो उन्होंने बोला हम करते हैं आपको वापसी पे जो है ना वो ले लेंगे,
अब हमारे साथ भी यानी अच्छे खासे एक तरह के 15-16 अफराद और यूं, तो खैर बिलाखिर तक यूं हुआ नहीं, मतलब कि उनसे रबता यानी यूं एक जो अलार्म बज गया ना कि भाई अपने तौर पे हम जल्दी चले जाएंगे वरना ये तो हमें
जी
एयरलाइन से ही वो कर देंगे, तो यूं ही हुआ फिर कि प्राइवेट गाड़ियां पकड़ी फौरन और हम एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए जो वापसी पे थी। यानी शुरू में या कम होता है तो कहीं बीच में, कहीं
जी
ज्यादा
ऐसे ही
में, कहीं इधर उधर पहुंचने में, तो ये वहां वाला वो इसके साथ कर लेता है। अच्छा, अगर इसके साथ हो गया ना तो ये जाहिर है उसको पेमेंट तो नहीं करेगा, ये उसको तो नहीं
हाँ,
पेमेंट।
जब कारोबार कर रहा है तो अंडरस्टूड सी बात है, वो सारी चीजें जो है
अच्छा,
वो
ये
देखते
उसको
जाता है।
पेमेंट नहीं कर रहा तो ये भी नहीं हो रहा कि ये इनको वापसी कर रहा हूँ,
जी
यार आपके साथ ये हो गया था। तो अगर कोई खुदा ना खासा किसी के साथ कोई भी मामला हो जाता है, बाद का तो होटल इसने बुक करवाया हुआ था और सामने वाला मुकर गया, उसने किसी और को दे दिया, रेट चढ़े थे उसने किसी और को दिया, और ऐसा भी हुआ,
जी
बेचारे कर करा के लेकर सब कुछ अपने वोचर दिखा रहे हैं सब कुछ, और कहीं हम तो आगे दे दिए, वो फलां बीच में पड़ा, फलां बीच में पड़ा उसने, यानी वो भी ऐसा ही हुआ कि आगे
जी
उसने चढ़ा दिए। तो अब उसी मिलता जुलता करीब करीब लोगों ने लेके एडजस्ट किया और हाजी भी खुश हुए कि ठीक है भाई, लेकिन अगर आप उनको दूर देंगे वहां से, बिल्कुल दूर देंगे, तो फिर आप दो ही सूरतें हैं, या तो अपना कमिटमेंट जो भी किया है वो खत्म करके आप उनकी वो इजाला करें और उसके मुताबिक आप उनको पैकेज में शामिल करें, उनके पैसे रिटर्न करें, अगर उस पर रजामंद होते हैं कि भाई ठीक है
जी
हम दूर लेंगे, तो ये चीजें आपको बहरहाल करनी होगी, या तो हमने कुछ हुज्जाज इकराम की। अच्छा, हज में इतने मामले नहीं होते, जो हज है उसमें जो एक मेन चीजें होती है ना हज में, तो तकरीबन कारवान वाले हों या कोई भी, वो खुद साथ होते हैं, उनका स्टाफ भी होता है,
खुद
क्योंकि
भी साथ
हज
होते हैं, फिर
खाने के साथ है,
जी
उसमें खाना भी शामिल
भी
होता
साथ
है,
होते हैं, फिर हज पे वहाँ की गवर्नमेंट की भी जो है वो ज़्यादा जो
फॉरन
कड़ी
वाले
मॉनिटरिंग जो है वो हो रही
वो ज्यादा होती है, और हुज्जाज इकराम में से कोई भी वो होता है तो उसके लिए
जी।
जाहिर उसकी सुनाई है कि यानी उससे पूछा कोई मामला है, प्रॉब्लम है, तो उसका हल हो जाएगा। हज में कम मसाइल होते हैं, ये वाला कि एक रोटल करीब दूर, इसमें तो मसाइल रहते ही हैं, 19-20 कहें या 18-20, 17-20, ये चलते रहते हैं, लेकिन दीगर मसाइल में काफ़ी कम होते हैं, सर्विस पूरी मिल रही होती है, और देर सवेर वो अपनी जगह, दायर लाखों लाख लोग होते हैं तो इसमें ये मसाइल हो जाते हैं। ये जो आम तौर पे इनफरादी जा रहे होते हैं और ऑफ सीजन में जा रहे होते हैं, 15 जा रहे हैं काफिला बनाकर, 20 जा रहे हैं, 25 जा रहे हैं, तो इनके साथ ये मसाइल बाज़ औक़ात हो जाते हैं। अच्छा कफील साहब, ये सारी बातें अपनी जगह, ठीक है, अब एक कमिटमेंट आपने यहाँ किया, अब थोड़ा सा हम ट्रेवल एजेंसी वालों की भी बात कर लेना,
जी
इन बेचारों के भी बड़े शिकवे शिकायत हैं कि यार सब कुछ करने के बावजूद जाने वाला खुश नहीं होता हमसे,
जी
वो कुछ ना कुछ रह ही जाता है कि यार इसने हमारे साथ ज्यादती की है, इसने हमारे, हालांकि जो होटल कहा था वही दिया, जिस नाम से कहा था वही दिया, जितने अफराद के साथ वो किया वही दिया, अब ये कहते हैं कि यार ये देखो इसने क्या होटल करा लिया, या वहां अपने किसी दोस्त के यहाँ गए तो उसका अच्छा होटल है भाई, लग्जरी है, उसका पैकेज नहीं देख रहे कि उसने कितना पैसा खर्च किया है,
जी
उसकी बजाय वो अपने उस कारवान वाले को कोस रहे होते हैं कि यार देखो इसने हमारे साथ ये किया है, हमारे साथ वो किया है, तो और इनको सुना भी रहे होते हैं बाद का, ये भी मसायल। अच्छा, कोई बीमार हो जाता है बिलफर्स, उस पर भी सुना है, मतलब बाद अवकात इन पे बहुत चढ़ाई कर देते हैं, इन पे उल्टा कर देते हैं कि यार आप इसका इलाज मुआवजे में तआवुन नहीं कर रहे, आ नहीं रहे, हालांकि ये लोग अखलाकी तौर पर करते ही हैं, इनके जान पहचान वाले बीमा होते हैं
जी
कुछ न कुछ, इसमें तो बंदा आम आदमियों की भी मदद करता है और अपने ही इलाके के, शहर वतन के, और बिलखुसूस वो जो इनसे कारोबार कर रहे हैं, कारोबार ये आपसे पैकेज ले गए, तआवुन तो करते हैं, लेकिन क्या ये भी उसी जिम्मेदारियों में शामिल है, इसमें कई चीजें।
देखिए, इसमें तो जैसे आपने कहा ना कि पैकेज का मुवाजना कर रहे होते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि वो दूसरे का पैकेज ज्यादा होता है, सेम पैकेज भी अगर हो, लेकिन अगर उसने आपको बता दिया कि भाई मैं आपसे ये पैकेज लूंगा और इसके मुकाबले में मैं आपको 1 किलोमीटर पे रिहाइश दूंगा,
सही, बिल्कुल
अब अगर उसी पैकेज के ऊपर कोई और कारवान जो है वो 500 मीटर के ऊपर रिहाइश दे रहा है, ये कम से कम धोखा नहीं दे रहा है। इसने आपको बता दिया कि भाई मेरी चीज अगर आपने लेनी है तो
मैं
वो
इतने में
इतने में दूंगा और इतनी दूर है, तो जो कमिटमेंट की है वो अगर वो पूरी कर रहा है तो ठीक है, क्योंकि वो आपको अपनी सर्विसेज दे रहा है ना,
बिल्कुल सही बात
हर एक अपनी सर्विसेज का जो है वो मजाज है कि वो जिस रेट के ऊपर चाहे जो है वो उसे बेचे। हाँ, उसमें धोखा ना दे, खैरख्वाही वाला पहलू उनके लिए है, कारवान वालों के लिए, कि भाई ठीक है, मुसलमान अपने भाइयों का खैरख्वाही करें, उनके साथ ख्याल रखते हुए मुनासिब अपना नफ़ा भी कमाएं, उन्हें भी जो है वो सहूलियात दें, ताकि वो उस जो इस मकसद के लिए गए हैं, उस फरीजे की अदायगी में अच्छे तरीके से जो है वो कामयाब हो सकें। लेकिन ऐसे उमूर पे कि जो कमिटमेंट के खिलाफ वर्जी नहीं है, आप दूसरों से कंपैरिजन करते हुए जो है वो आप जो है वो बात करते हैं, तो बहरहाल ये कस्टमर के लिए भी जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो ऐसे कस्टमर जो है वो, उनका ऐसा रवैया वहाँ पर, अगर वो उस कारवान वाले को बुरा भला कहते हैं या उसकी गीबतें कर रहे हैं, तो बहरहाल ऐसे में ये गुनाहगार हैं। अच्छा, अगर वाकई कारवान वाले ने गलत भी किया हुआ है तो भी गीबतें करना तो वहाँ जायज़ ही नहीं है, कहीं भी जायज़ नहीं है। अगर उसने वाकई आपको पैकेज नहीं भी दिया तो भी आप अगर होटल में बैठ कर, चूँकि वहाँ हरम शरीफ के जो होटल हैं वो सारे तकरीबन ही हुदूद हरम के अंदर ही जो है वो मौजूद हैं, तो वहाँ 1 गुना 1 लाख गुना के बराबर है। तो एक एक बात हुई, आपने उससे जो है वो बोला कि भाई आपने ये नहीं किया, किसी जगह कंप्लेन करनी थी तो वो कर दी, लेकिन अगर आप जो है वो होटल में बैठ कर या मस्जिद शरीफ में बैठ कर जो है ना वो उसके खिलाफ जो है बातें ही आपस में दो चार अफराद मिलकर किए जा रहे हैं, तो देखिए ये गीबतें करके आप अपने ही जो है वो नामे आमाल के अंदर गुनाह जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस अगर गलती है तो जिससे है उससे इजाले के लिए आप बात करें, या अगर कोई उसका बड़ा फर्द है या गवर्नमेंट का इदारा है जिससे आपने शिकायत करनी है तो आप वो शिकायत कीजिए, मगर आपस में बैठ कर गीबतें करना, चुगली करना, बहतान जो है वो बांधना, ये बहरहाल जो है वो हम वहाँ पर जिस काम के लिए गए हैं उसके भी बरक्स है, और उल्टा बजाय नेकी के हम
गुनाह बन
लाखों गुना जो है वो अपने नामे आमाल में भर कर वापस आ रहे हो।
और गीबत का जाना भी मामला हो फिर साहब, ये भी बड़ा देखा गया है वहां पर, इस तरह की गुफ्तगू जो भी जाहिर मिलेगा मुलाकात करेगा, बल्कि मुझे तो किसी एक ने बड़ी प्यारी बात बताई वहां पर कि मैं कोशिश करता हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं मस्जिद नबी शरीफ में हूँ या मस्जिद, तो मैं ऐसी जगह बैठूंगा जो किसी और मुल्क के हैं, अरबी हैं, किसी और मुल्क के हैं, मैं बैठूंगा, कम अज़ कम वो मुझसे बात नहीं करेंगे, मैं उनसे नहीं करूंगा, चाहते हुए भी नहीं कर पाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा सलाम करूंगा, खैर खैरियत मरहबा बस, इतना कुछ और बात ही नहीं हो पाएगी। लेकिन अपनी पढ़ाई करता रहूँगा, जो भी पढ़ना है, यहाँ तिलावत है, दुरूद शरीफ है, कुछ भी। अच्छा, आपस में ये मिल के बैठेंगे तो और तो ज़ाहिर है कोई काम है नहीं वहाँ पे, उस अलावा यानी दुनियावी बातें में करें तो बस यही होगा कि आपका होटल, आपका पैकेज, आपका पैसा, ये यानी ये सारी इसके इर्द गिर्द सिलसिला जो है वो घूम रहा होता है। तो इन चीज़ों से, गुफ्तगू से भी हमें वहाँ पे बचना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने वाले काम करने हैं, इबादत बजा लाएँ। अल्लाह सबको बार बार हाज़िरी अता फरमाए, मक्का मुकरमा हो, मदीना मुनवरा, माशाल्लाह जब भी जाएँ उसकी बरकतें ही आदमी पाता है, और वो चाहे खास सीजन के दिन हो या ऑफ सीजन, हम अपने एतबार से बोल रहे हैं, वहाँ तो हर वक्त ही अल्लाह की रहमतें हैं और रहमतों की बारिशें हो रही हैं। अल्लाह पाक सबको बार बार हाजिरियाँ अता फरमाए। बहरहाल काफ़ी गुफ्तगू हुई इस टॉपिक पर, इस मौजू पर, उम्मीद है कि दोनों फरीक आपस में ये मामला यहाँ ही तय करें और हर तरह की बात बिल्कुल खुल कर वासे बयान कर दें। फिर उसके बाद आपको जो है वो ज़ाहिर है फिर आप पर कोई किसी तरह का इतराज़ नहीं रहेगा। जो कफील साहब मार्केट में काम कर रहे हैं इस हवाले से, उनमें बहुत बाद अच्छे नाम भी हो जाते हैं,
जी
और ये एक इनका बिजनेस का भी तो फायदा है, लोग वापसी आकर इन्हीं की तो तारीफ करेंगे।
सर्विसेज तो कोई जो भी देता है ना, अच्छी
हाँ
सर्विसेज के अंदर जो मामला है ये सिर्फ इसी का नहीं, आप नॉर्मल भी सर्विसेज की तरफ आ जाएं, आप
सैर तफरी करने जा रहे हैं, कुछ भी
जैसे
जा रहे
और
हैं।
भी चीज़ों की तरफ, जैसे नेट की सर्विस आपने ली हुई है, घर पे इंटरनेट लगा हुआ है उसमें है, और दीगर जहाँ जहाँ भी आप सर्विस, पिक एंड ड्रॉप के लिए आपने वैन की सर्विस ली हुई है बच्चों का, तो देखें जहाँ भी सर्विस देने वाला जो प्रोवाइडर है वो कमिटमेंट के मुताबिक करता है तो उसको कस्टमर भी और अच्छे मिलते हैं, उसका काम भी जो है वो चलता रहता है,
टाइम की पाबंदी
टाइम की
के सब
पाबंदी है,
चीज़ें
दीगर
भी
सारी चीज़ें, और जब वो जो है वो अपनी सर्विसेज की फरहमी के अंदर जो है वो कमी बेशी करता है, बेशी तो नहीं करता, कमी जो है वो करता है, तो फिर जो है वो कस्टमर भी उसके जो है वो टूटते हैं, नुकसान भी होता है। ये हर जगह के लिए
नहीं
जिसने
नहीं
भी जो कमिटमेंट किए,
बेशी भी होती है
मसलन
यानी ये, हाँ जो आज के दिनों में खाने के लिए जैसे 2 डिशें, तो इसको 3 डिशें भी करते हैं,
अच्छा
ठीक है, खाने खिलाते हैं हाजियों को, अच्छी अच्छी नियतों से खिलाएंगे, इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा। तो इसमें तो सुना है
बेशी भी जो
मतलब,
है वो
और काफी यानी कि ये या 1 डिश का खाना तय है तो उसमें कभी साथ वो चीज़ें भी शामिल होगी, आइसक्रीमें भी होगी, कोल्ड ड्रिंक भी होगी, दीगर चीज़ें ये देते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें कुछ ना कुछ बेची तो हो जाती है।
बहरहाल ये
अच्छा,
सर्विस
सफ़र के खाने आम तौर पे ये उसमें शामिल नहीं करते,
जी पैकेज में
तो
वो भी दे देते हैं।
वो भी दे देते हैं। बाकी कुछ चीज़ें हज के सीज़न की हैं दोनों को समझाने वाली, लेकिन अभी हम कसदन उसको उस पर बातचीत अभी नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह तो उस वक्त इस पर भी गुफ्तगू, इन इंतजामी मामलों में भी इस पर जो है वो जरूर की जाएगी। हमारे पास एक पैकेज भी तैयार है, देखते हैं उसमें क्या पूछना।
अख्तर क्या बात है, ऐसे आगे बैठ गए हो, सलाम भी नहीं किया, कहाँ से आ रहे हो?
भाईजान पड़ोस में इंतकाल हो गया था, कब्रिस्तान से आ रहा हूँ, मगर मुझे एक बात आज समझ नहीं आई।
क्या समझ नहीं आया?
कुछ अरसे पहले इनकी अम्मी का इंतकाल हो गया था, मगर आज उन्हीं की कब्र में उनकी बड़ी बेटी की तदफीन कर दी गई। पूछने पर पता चला कि जब वो बीमार थे उन्होंने वसीयत की थी।
अच्छा, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है?
भाईजान क्या हमारी शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है?
मालूम तो मुझे भी नहीं है, ये तो मुफ्तियाने कराम से ही पूछने पड़ेगा।
रुकिए, परेशान ना हो, मदनी चैनल पेश कर रहा है प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, जिसमें आपकी रहनुमाई करेंगे मुफ्तियानी कराम। आइए सुनते हैं मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं।
जी क्या कहते हैं इनकी परेशानी?
वसीयत और कब्र का मामला, वसीयत कोई करे या ना करे, दोनों ही सूरतों में सबसे पहले तो हम कब्र की बात करते हैं कि किसी भी कब्र को खोलना ये जायज़ नहीं। जब एक मर्तबा हमने मुर्दे को जो है वो कब्र में दफना दिया, तो अब उसका आलम बरजख जो है वो शुरू हो गई। तो इस आलम बरजख में, बरजख माने ही पर्दा है, तो ये जो है वो उखरवी मामलात के ऊपर गोया के पर्दा है, तो उसका इंकिशाफ जो है वो उसका खोलना जायज़ नहीं है
बिला जरूरत।
बिला ज़रूरत। तो अब जो है वो इसको किसी भी तौर पर खोलकर इसमें किसी और को दफन करना ये हरगिज़ जायज़ नहीं है। नबशे कब्र यानी कब्र खोदना ये हराम है। तो कोई वसीयत करे या ना करे, उस कब्र को साल हो जाए या 100 साल हो जाए या कई सदियां बीत जाएं, उसको आपके लिए खोल कर उसमें किसी दूसरे मुर्दे को दफन करना जायज़ नहीं। कई लोग जो है वो इस मामले के अंदर गलत फहमी का शिकार हैं। इस तरह की हदीस भी जो है वो लोग बताते हैं कि जनाब एक कब्र से 40 मुर्दे निकलेंगे, तो लिहाजा ये जिम्मेदारी किसने पूरी करनी है, हमने ही करनी है ना, तो वो 40 मुर्दे दफनाने के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं और गोरकनों की बात में आकर जो है वो कर रहे होते हैं। तो गोरकन कोई मुफ्ती नहीं होता, उसने तो अपना जो है वो कारोबार करना है, अपने पैसे जो है वो कमाने, वो तो इस तरह की बातें करेगा। अमूमी तौर पर वो जो है वो इल्म दीन से नावाकिफ लोग होते हैं।
और मेहनत भी कम है ना,
जी
इसको सिर्फ ऊपर से खोलना है, उसको खोदना
उसको
पड़ेगा।
पूरा खोदना पड़ेगा, तो ना उनकी बातों में ना आए ना लोगों की बातों में आए। कब्र के अंदर किसी दूसरे की तदफीन करना ये जायज़ नहीं है, जबकि पहले से एक मुर्दा दफन हुआ हुआ है, चाहे उसको सालों गुजर गए हों, लाशा मौजूद हो या ना हो, जो है वो गल गया हो, जो भी हो गया हो, हरगिज़ हरगिज़ इजाज़त नहीं है। बल्कि अगर कोई कब्र खुल भी गई है तो उसमें ये हुक्म नहीं है कि आप उसमें दूसरा मुर्दा डाल दें, बल्कि उसी कब्र को जो है वो बंद कर दिया जाएगा, उसको ही अच्छे तरीके से उसको बंद कर दिया जाए, लेकिन उसमें दूसरा मुर्दा जो है वो दफन करना ये हराम है। चाहे अपने रिश्तेदार की कब्र हो चाहे अजनबी की कब्र हो, दोनों ही जो है वो हराम है। तो ये जो हक है मुर्दे का, ये रिश्तेदारों का हक नहीं है कि भाई वो इजाज़त दे दें तो ठीक है फिर दूसरे को दफन कर दें, नहीं, बल्कि ये मुर्दे का हक है। मुर्दे ने अगर खुद भी ये वसीयत की हो ना कि मेरे मरने के इतने साल बाद मेरी कब्र में दूसरा दफना देना, तो भी उसकी इस वसीयत पे अमल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज तो वो मसला जानता नहीं है ना, इसलिए वो ये बात कर रहा है। जब कब्र में जाएगा तो वो भी यही दुआ कर रहा होगा कि काश मैं ये अपनी वसीयत ना ही की होती मैंने। तो बहरहाल ऐसा करना भी हराम है और वसीयत करना भी हराम है। आजकल लोग वसीयत हर चीज से मुतालिक कर देते हैं, ये चीज
और
जाने
सामने
बगैर,
वाले भी कहते नहीं वसीयत है।
हाँ वसीयत है, ये चीज़ जाने बगैर कि वो क्या है। अच्छा, इसमें भी वसीयत चंद तरस की होती है, अगर इसी को ले मैयत के अतबार से, एक तो ये भाई मुझे फुलां के बराबर में ही दफन करना या फुलां कब्रिस्तान में दफन करना, वो हमारा खानदान का कब्रिस्तान है। अब उस कब्रिस्तान में जगह है या नहीं है, औलाद जो है वो किसी ना किसी कब्र को खुदवा कर ही उसमें डालती है कि अम्मी ने वसीयत यही की है कि इसी कब्रिस्तान में दफन करना है, अब्बू के बराबर में ही दफन करना है। तो ये सारी वसीयतें जो है वो हराम हैं, इन वसीयतों पर अमल करना जायज़ नहीं है। और अगर हमारे सामईन में से भी, नाज़रीन में से भी, हम में से भी अगर किसी ने कोई ऐसी वसीयत की है, तो अपनी ज़िंदगी में उसे आज कैंसिल कर दें और औलाद को बुलाकर बाकायदा बता दें कि भाई ऐसा ना करें, बल्कि जिस कब्रिस्तान में फ्रेश कब्र मिले मुझे वहां दफना दें, चाहे वो कब्रिस्तान घर से थोड़ा दूरी हो।
सही।
अच्छा, अब इसके अंदर भी एक आध जगह पर मैंने जो है वो पूछा, तो वो क्या कि भाई दूर वाले कब्रिस्तान में जगह तो मिल रही थी, लेकिन वहाँ फातिहा पढ़ने कौन जाएगा,
सही।
ये घर के करीब है, रोजाना रास्ते में ही पढ़ता है, काम पे से आते हुए हम फातिहा अब्बू की कब्र पर जो पढ़ दें,
रोजाना
इसलिए
वो भी नहीं पड़ता बाद में।
हाँ इसलिए यहाँ पर ही जो है ना हमने कोरगन को पैसे दे के ना पुरानी कब्र ही खुदवा के उसी में डलवा दिया। तो ये तमाम चीज़ों में फातिहा पढ़ने के लिए वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है, बिलफर्ज आप अगर इतने नेक हैं कि आप जो है वो फातिहा रोज़ाना ही पढ़ने जा रहे हैं तो भी उसके लिए जाना ज़रूरी नहीं है, आप घर से भी फातिहा ही साले सवाब कर सकते हैं। और जब आपके वालिद मरहूम जो है वो कब्र में जाएंगे दूसरे के, तो उनको इस बात से तकलीफ़ ही होगी कि मेरी औलाद ने गैर शरई काम किया और मुझे जो है वो इस कब्र में डाल दिया। तो चूंकि औलाद के गुनाहों पर वालिदैन को जब खबर पहुंचती है तो उन्हें तकलीफ़ होती है कब्र के अंदर भी, तो लिहाजा ऐसा हरगिज़ ना करें। वालिदैन की कोई भी वसीयत हो या किसी भी शख्स की कोई भी वसीयत हो, उस पर अमल करने से पहले शरई रहनुमाई ज़रूर ले लें कि आया ये वसीयत पर अमल करना जायज़ भी है या नाजायज़ है, अमल करना सवाब है या जो है वो गुनाह है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसकी वसीयत पर अमल करके आप तो ये समझ लें कि हम उनका दिल खुश कर रहे हैं, उनकी जो है ना ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं, और दर हकीकत मुर्दा अंदर वहां से गोया कि यही पुकार रहा हो कि यार मैंने तो गलत वसीयत कर दी थी, तुम ही कम से कम इस वसीयत पे अमल ना करो। तो लिहाजा इस तरह हरगिज़ नहीं करना चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है बड़े शहरों के अंदर बसा औकात जो है वो बाज़ कब्रिस्तानों में जगह वाकई नहीं होती, लेकिन वही के करीब वाले में नहीं है लेकिन थोड़ा से दूर वाले में अगर जाए तो जगह मिल जाती
मिल
है, तो
जाता
ऐसी सूरत के अंदर दूर ही जाना होगा।
सही।
और कई ऐसे जगह हैं पंजाब वगैरह के अंदर के, वहाँ वसात है, वहाँ पर जो है वो मिल जाती हैं जगह, मगर उसके बावजूद भी यही कि नहीं जनाब अम्मी के बराबर में अब्बू की बनानी है या फलां के बराबर में फलां की जो है वो बनानी है, इसके लिए लोग इस तरह के मामलात करते हैं। तो बहरहाल ये सरासर हराम है, ऐसा करने वाले गुनाहगार हैं। अलबत्ता अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो अब ये नहीं कि हमारा मसला सुनने के बाद जाके उस कब्र से उस मुर्दे को निकाले।
हाँ, यानी आप वो दोबारा वो एक
हाँ,
और गुना हो जाएगा।
एक और गुनाह हो जाएगा, जिसने कर दिया तो वो अपने इस गुनाह पर जो है वो तौबा करे और जो है वो बहरहाल आइंदा के लिए ना करें, बल्कि अपने रिश्तेदारों में भी ये बात जो है पैगाम पहुंचाएं कि भाई ऐसा करना जायज़ नहीं है। और जो लोग ये समझते हैं कि भाई इस तरह की हदीसें पाक है, तो ऐसी हदीसें पाक कोई नहीं है जिसमें ये जिक्र है हो कि जनाब 40 मुर्दे एक कब्र से जो है वो निकलेंगे, तो ऐसा करना जायज़
70 भी निकालने के लोगों की ये होते हैं कि
जी।
70 निकलेंगे, तो ऐसा किसी रिवायत में यूं नहीं है। कॉल सुनाए।
मुफ्ती साहब, ये इरशाद फरमाए कि बाज़ जो है ट्रेवल वाले ये कमेटी रखते हैं अपने पास और महीने के एक मान देते हैं कि ये आपको देने हैं, हर साल कुरानदाजी होगी, जिसका नाम आएगा उसको उमरा करवा के वापस लाएंगे, तो वो कमेटी फिर आखिर तक भरनी है, तो ये सूरत सही है, जायज़ है कि नहीं जायज़ है?
उमरा कमेटी तो तरह तरह की चलती हैं और कई तो इसमें जिस पे उलमा के फतवे भी नाजायज़ के मौजूद हैं, इन्होंने कहा कि वो कमेटी आखिर तक भरेंगे। अब ये क्या सूरत होगी, क्या कहते हैं?
देखिए, कमेटी हो तो ठीक, उमरा कमेटी की तरफ आप जाएंगे तो कई मसाइल होंगे।
या
मिसाल के
उमरा
तौर पे
कुरानदाजी या इस तरह की?
हाँ, कि आपने जो है वो कमेटी आपने तय की है कि भाई 2 लाख की कमेटी है और 10-10 हज़ार रुपये महीने के जमा कराने हैं, कुरानदाजी करेंगे, जिसका नंबर मिलेगा उसको 2 लाख रुपए जो है मिल जाएंगे और बाकी वो पैसे जमा कराएगा। गोया कि सिर्फ नंबरिंग की तकसीम के लिए आप कुरानदाजी कर रहे हैं, लेकिन हर एक को जितने पैसे मिल रहे हैं वो उतने ही जमा करवा रहा है,
ठीक है।
चाहे पहले चाहे बाद में, ये जायज़ है। लेकिन जब आप उम्रे की तरफ जाएंगे तो देखें उसके अंदर बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि आज पैकेज कुछ होगा,
कल पैकेज कुछ
6 महीने बाद कुछ और होगा, रमज़ान में जाने वाले का पैकेज कुछ और होगा, तो आप उसे किस पैकेज के अंदर जो है वो लेकर जो है वो जाएंगे, एयरलाइन के टिकट जो है वो अप एंड डाउन जो है वो होंगे। तो अगर ये है कि भाई 2 लाख के अंदर जो है वो होगा पैकेज, तो वो अगर उसमें भी कुछ पैसे बचेंगे तो आपको वापस करने होंगे, ज़्यादा होंगे तो आपको उससे तकाजा जो है वो करना पड़ेगा। तो लिहाजा उम्रा पैकेज के नाम का कमेटियों के नाम पर कोई कमेटी ना डालें। इस तरह की अमूमन जो कमेटियां चल रही हैं वो नाजायज ही हैं। हाँ, आप सिंपल कमेटी डालें, अब सामने वाले की मर्जी है, वो उन पैसों से 2 लाख से उमरा करने जाए, चाहे अपने बच्चे की शादी करे, जो भी करे वो उसके अपने पैसे हैं। तो इसके अंदर आप किसी को मजबूर भी नहीं कर सकते, बाउंड भी नहीं कर सकते कि नहीं भाई आपने जो उमरा ही करना है इससे, नहीं, ये उसके पैसे हैं। गोया कि वो अपने पैसे जमा करवा कर कर्ज के तौर पर कुछ पैसे ले रहा है, या अपने पूरे पैसे जमा करवा कर फिर पैसे ले रहा है, तो वो नॉर्मल कमेटी के तौर पर तो ठीक है, लेकिन उम्रा कमेटियों का जो तरीक़ेकार इस वक्त राइज है वो नाजायज़ है। इस हवाले से दफलिफ्ता अहले सुन्नत की वेबसाइट के ऊपर फतावा भी बाकायदा मौजूद है कि उम्रा कमेटी किन किन वजूहात की बुनियाद पर नाजायज़ है, तो इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं।
बाद इसमें ये भी शामिल कर लेते हैं, जब कमेटी निकली तो वो गया, यानी उसका तो
हाँ, ये उसको बाद में जो है वो पैसे मजीद भरने नहीं होंगे। मसलन
हाँ
उसने अगर जो है
उसकी
वो
किस्मत निकल आए।
50,000 जो है वो भर दिए, और पैकेज जो है वो उम्रे का 2.5 लाख का है, तो अब ठीक है, उसके अगले 2 लाख रुपए माफ हो गए। तो ये तो कर्ज के ऊपर जो है वो नफा लेने वाली सूरत है, जो कि सूद
सूद
की
का
सूरत बनी।
अल्लाह अकबर, यानी नेकी के नाम पर भी बाद हज उमरे के नाम पर भी इस तरह के आदमी, अनजाने में कहेंगे इसको या कम इलमी या जहालत में कहेंगे, सूद में पड़ रहा है। बाद का जुए की भी सूरत इसमें आ जाती है, और धोखा दही वाली आमतौर पर सूरत मौजूद ही होती है। कई लोग तरह तरह के लोगों को वो जज्बात से खेलते हैं, ये तो मुकद्दस जज्बात हैं लोगों के, जो हर मैन तैयबैन की हाजिरी के लिए तड़पते हैं। अब वो कोई ऐसा कभी निकाल देंगे भी इतनी फीस है और इतना ये कार्ड खरीद लें, कुछ ये खरीद लें, कुछ उम्रे के हवाले से हमने ये निकाला है, लोग बेचारे उसमें धोखे में पड़े रहते हैं और वो पैसे भर रहे होते हैं। कुछ दो चार को भेज भी दिया जाता है, लेकिन एक तादाद होती है कि जिनके पैसे ये लोग लेकर और खुद खा पी कर आगे पीछे हो जाते हैं। तो खुदारा इस चीज़ से ज़रूर अपने आप को डराइए, किसी का एक पैसा भी अगर नाहक तरीके से लिया तो फिर इसका जवाब देना क़यामत के दिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी ऐसा काम हरगिज़ नहीं करना चाहिए। लोगों से भी हम कहेंगे कि इस तरह की लालच में आप ना आए, आप इस तरह की लालच में ना आए, कहीं ऐसा नहीं हो कि लालच के अंदर आप अपना वक्त भी ज़ाया करें और पैसा भी ज़ाया करें और मज़ीद आपको टेंशनें बढ़ जाएं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको शरीयत मुतहरा पर अमल पैरवने की तौफीक दे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे इजाज़त चाहते हैं।
हादियों रहनुमा हमारे गुलामा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।